चल रहा है और उसकी गाथा नंबर 250 को हम देख रहे हैं। कल जो बात निकली थी, दयाते सुखनी वेलड़ी, दयाते सुखनी खान, अनंत जीव मुक्ति गया, दयातणा परिणाम। इस उक्ति की जो भाषा है या श्लोक की जो भाषा है, उसका मतितार्थ यह जीव नहीं समझते। पेज नंबर 63। इसलिए वो शुभ परिणामों को ही मुक्ति का कारण मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो शुद्ध परिणाम है वही मुक्ति का कारण है। ये बात को देखते हुए हम पेज नंबर 63 पर आखिरी पैराग्राफ पर आए हैं। भाई आ तो त्रण लोकना नाथ वितराग सर्वज्ञ देव सर्वज्ञ परमेश्वर नो असाधारण मार्ग छे। तो साधारण मार्ग यानी क्या? कोई विशेष मार्ग है, इसके कंपैरिजन में पैरेलल में अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। एकमेव मार्ग है, क्यों कि दू एक क बोले इटला कारमा असंख्य समय जाए। क्या लिखा अभी हमने, अब भी मैंने बताया था कि हमें राग आया है ये समझ में आने को असंख्य समय लगते हैं, तो आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। अब यहां देखो क्या लिखते हैं, क बोले। देखो हम जानते हैं ना, गुरुदेव ने तो एक ने कितनी ही बार बताया है क्या कि जो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त निगोदिया जीव है उसका जो ज्ञान का उगाड़ है वो अक्षर के अनंत विभाग। अभी वो अक्षर यानी अवकड़ अक्षर नहीं हो, वो अक्षर नाम का ज्ञान है। यानी वो क नाम का जो अक्षर है वो बोलते बोलते असंख्यात समय निकल जाए। एक समय कितना छोटा होगा ख्याल में, एवा एक समय में जे त्रण का त्रण लोक ने देखे जाने एवा सर्वज्ञ प्रभु नो आ मार्ग छे। एक समय नु शू सामर्थ्य, ए सर्वज्ञ प्रभु ये वस्तुनी स्थिति जेवी ज्ञान में जोई तेवी दिव्य ध्वनि में कही छे। ते दिव्य ध्वनि में आईवू के हूं परने जीवाड़ी शकू छू ने परमने जीवाड़ी शके छे एवी वस्तु स्थिति नथी। हमेशा स्वामी जी एफर्मेटिव सेंटेंस करके उसको निगेटिव कर देते हैं। पहला लगता है कि अरे मैं जीवन को बचा सकता हूं, बाद में बताते एवं वस्तु की स्थिति नहीं। आ स्त्री कुटुंब दीकरा दीकरी इत्यादि ने हूं भरण पोषण करी तेमने नभावू छू ए मान्यता कहे छे, मिथ्यात्व भाव छे। भाई परजीवनी पर्याय ने कोण उत्पन्न करे अने एने कोण टकावे, एनो कोण व्यय करे? उत्पाद वे द्रव्य ए तो द्रव्य नो पोतानो स्वभाव छे, तो पछी परनु जीवन मरण कोण करी शके? जो मुनिराज पंच महाव्रतधारी होय छे तेमा एक अहिंसा महाव्रत छे। हवे ते अहिंसा नो परजीवोनी रक्षा नो जे विकल्प आवे छे तेमा जो कोई एम माने के हूं परनी दया करी शकू छू, छ कायना जीवोनी रक्षा करवी मारू कर्तव्य छे, तो आई कहे छे ते मिथ्यात्व भाव छे। બહુ આકરી વાત ભાઈ. બાપા, પણ આ સત્ય છે. જ્ઞાનીને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર ન હોય ત્યારે પ્રમાદવશ અસ્થિરતાના કારણે પરજીવની રક્ષાનો વિકલ્પ આવે છે એ જુદી વાત છે, પણ તે કંઈ એ વિકલ્પને પોતાનું કર્તવ્ય માનતો નથી, વિકલ્પના તે કરતા થતા નથી. પછી પરજીવના જીવનના કર્તાપનાની તો વાત જ ક્યાં રહી? પરજીવનું જીવન છે તે તેની તે કાળે ઉપાદાન યોગ્યતાથી છે, પોતે તો તેમાં નિમિત્ત માત્ર છે. આવું જ્ઞાની યથાર્થ જાણે છે. પણ નિમિત્ત તો થવું ને, એને આવી બી કરતા બુદ્ધિ હટી નહીં હૈ, તો નિમિત્ત કરતા બનને કી ઈચ્છા બાકી હૈ, એટલે પ્રશ્નકાર કહે રહે હૈ. પણ નિમિત્ત તો થવું ને, નિમિત્ત થવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે? અરે, જ્યારે ઉપાદાન યોગ્યતાથી એની પર્યાય એનામાં થાય છે ત્યારે આને એવો વિકલ્પ, એવો જ વિકલ્પ હોય છે, અને ત્યારે તેને નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. બંનેનું, એના જીવનનું એટલે જીવવાનું અને આના વિકલ્પનો સમકાળ છે, એક જ કાળ છે. જ્યારે તે જીવનું આયુષ્ય છે તે જ કાળે આને વિકલ્પ આવ્યો છે. પણ એમ તો નથી કે એ વિકલ્પથી સામો જીવ જીવે છે, તેથી નિમિત્ત થવાની ચેષ્ટા કરવી એ તો કર્તાપનાની માન્યતા રૂપ અજ્ઞાન જ છે. ક્યાં દેખો અભી બતાતે હૈ કે પ્રશ્નકારને પ્રશ્ન ક્યાં ક્યા હૈ કે આ નિમિત્ત તો થવું છે ને, નિમિત્ત તો થવું ને, કે આપ ભલે કરતા નહીં કહે રહે લેકિન નિમિત્ત બનને મેં ક્યાં હર જાય એસા. તો અભી યહાં ક્યાં સમજા રહે હૈ કે પહેલે મેં પહેલે નિમિત્ત કોઈ બન સકતા હૈ ક્યાં? જબ કાર્ય હોતા હૈ તબ જો અનુકૂળ કોઈ હોગા ઉસ વસ્તુ પર, યાને સચ કહો તો ઉસ સમય કી પર્યાય પર આરોપ આતા હૈ કે ભાઈ યે અનુકૂળ થા. નિમિત્ત કી નિમિત્ત જો હૈ ને વો તો દ્રવ્ય તો હમ બહુ સ્થૂલતા સે કહેતે હૈ કે પરદ્રવ્ય નિમિત્ત હૈ કરકે. કુંભાર નિમિત્ત હૈ તો કુંભાર નિમિત્ત હૈ તો હમેશા તીન કાલ નિમિત્ત રહેના ચાહીએ. લેકિન જબ વો ઘડા બના રહા હૈ, ઉસ પર્યાય હો રહી હૈ, વો ઉસકો ઉસ સમય કા અનુકૂળ કહેંગે. સોતે હુએ કુમાર કો હમ અનુકૂળ કહે પાયેંગે કે નહીં? ખાના ખાતે વાલે કો વો ઉસ રૂપ જો ક્રિયા મેં ફંસા હુઆ હૈ ઉસકો હમ અનુકૂળ કહેંગે. તો યહાં ક્યાં કહે રહે હૈ દેખો સુનો, કે જ્યારે ઉપાદાન યોગ્યતાથી એની પર્યાય, યાને એની અને યહાં અભી હમ ઘડાની પર્યાય સમજ લો, ફિર આપણ સિદ્ધાંત પર આતે હૈ. જ્યારે ઉપાદાન એટલે યોગ્યતાથી ગળાની પર્યાય એનામાં થાય છે ત્યારે કુમારને એવો જ વિકલ્પ હોય છે. અભી અભી હા અભી સુન ના, અભી યહાં કી બાત ક્યાં હૈ કે નિમિત્ત તો થવું છે ને, યાને મુજે ક્યાં ભાવ હુઆ એ પ્રાણી કો મેં બચાઉં. અબ યહાં ઉસકી ઉપાદાન યોગ્યતા એસે કે વો જીવે और उसी समय इसको यानी बचाने वाले को, आने यानी बचाने वाले को ऐसा विकल्प आवे कि मैं उसको खाना खिलाऊं, पानी पिलाऊं, उसको अन्य से बचाऊं. तो अभी ये बात ध्यान में रखते हुए सुन पढ़ो. अभी थवानो निमित्त थवानो प्रश्न क्या छे? जारे उपादान योग्यता थी एनी पर्याय एनामा थाय. ऊपर ने कौन सी बात बताई थी कि जो जीने वाला है वो अपने स्वयं के जीवन से जिएगा. હા, ઉસકી બાદ આગળ બઢા રહે અને ત્યારે આને એટલે બચાવવા વાળાને એવો જ વિકલ્પ હોય છે, અને ત્યારે તેને એટલે પેલા વિકલ્પ વાળાને નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. હાજી, વિકલ્પ કરતા વિકલ્પ જે કરે છે એને નિમિત્ત કહેવાય ને?
વિકલ્પ પણ નિમિત્ત કહી.
અરે, એ તો તું પર્યાય કી બાત કર રહે, હમ દ્રવ્ય કી બાત કર રહે. अभी पहले ही बताया ना, एक समय की पर्याय वही निमित्त है। लेकिन हम कुमार को, तो कुमार को जैसा हम कहते हैं निमित्त, वैसे यहां पर्याय वाला जो है, जिसके विकल्प आई है, आया है, उसके बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे, देखो, त्यारे तेने निमित्त केवम आवे छे, बन्ने नो एना जीवन नो एटले जीवनो अने आना एटले पेला मानस ना विकल्पनो समताल छे, एकज कार छे। जारे ते जीवनु आयुष्य छे तेज कड़े आने एटले पेला मानस ने विकल्प आव्यो छे, पण एम तो नथी के ए विकल्पथी सामो जीव जीवे छे, तेथी निमित्त थवानी चेष्टा करवी ए तो कर्तापनानी मान्यता रूप अज्ञान ज छे। ये बात ख्याल में आई भाई साहब, क्या भी कुछ अटक है?
विकल्प वाला ने आने कहू,
आगे कहू
ने, तारी तेरी निमित्त कहवा आवे छे ने, ये तो निमित्त विकल्प को निमित्त कहया, बन्ने नो एटले जीवन नो अने आना विकल्प नो समकाल छे, એટલે જે સમકાળ છે એના ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આવ્યો ને, આરોપ આવ્યો તો આપણો પ્રશ્ન છે ને, આને એટલે કોને કહ્યું? તો વિકલ્પ કરવા વાળો જે છે એને આને કહ્યું, જો ને, આને એવો વિકલ્પ। હા, પ્રશ્ન ક્યાં થાય, કિસી કા નિમિત્ત હોના કે નહીં હોના, આપ ક્યાં કહેતે હૈ? निमित्त हुआ नहीं जाता। हाँ, तो किसी को विकल्प आया, बचाने का विकल्प आया, और इन केस वो बच गया। बचाने का विकल्प पहले भी आया था, परंतु वो बच नहीं गया, कोई अन्य जीव, तो उस पर वो बचाने का निमित्त कहा कि उसको कहा कि नहीं कहा, उसके विकल्प को निमित्त कहा कि नहीं कहा, उसको बचाने का भाव आया परंतु वो जीव मर गया, तो निमित्त कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसको नहीं कहेंगे। बचाने का भाव आया और वो बच गया, तो बच गया तो अपने ऊपर अपनी योग्यता से बच गया, और तब इसके विकल्प को वहां निमित्त कहने में आया।
जो
तेने लिखा है विकल्प के लिए, तेने कहा है
वो विकल्प।
हाँ, क्योंकि आगे के लाइन में क्या कहा है, बनने में एक कार्य है, कौन है? जुवानों ने विकल्प ना, एक काम है, तभी तो उसमें निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है। वो तो स्थूल, विकल्प वाला ने भी निमित्त कहेंगे, जैसे कुमार को निमित्त कहा, ऐसे विकल्प करने वाले को भी निमित्त कहने में आएगा, परंतु यह उन्होंने ज्यादा स्पष्टता से बताया, परंतु वो कुमार की जो क्रिया है घड़ा बनाने रूप, उसको निमित्त कहेंगे हम, कुमार का जो योग और उपयोग उसमें लगाया है उसको निमित्त कहेंगे। वैसे यहां लेना, उसने तो पूछा था निमित्त तो थू है, प्रश्न में उसकी भूल है, ये बात यहां बताना चाहते हैं।
देखो, वास्तविक देखा जाए तो एक समय की पर्याय में ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, यानी वहां योग्यता रूप जो कोई परिणमन होना है वह पर्याय, और यहां सामने वाला जो दूसरा कोई द्रव्य है उसकी जो पर्याय, निमित्त नैमित्तिक संबंध की ड्यूरेशन एक समय की है, ख्याल में? उस अपेक्षा से यहां विकल्प को भी कहा है, और उसके पहले जो त्यारे आने वो विकल्प हो ही, तो आने लिखा है वहां वो जीव की बात की। अब आगे बढ़ेंगे। आह, शैली तो जो आचार्य ने, आह, सत्नु शरण कोने कहिए, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वज्जामी, भगवान केवल ये कह लो धर्म शरण छे, ते धर्म कोने कहिए, के राग रहित वीतराग परिणति निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी उत्पत्ति थवी, તે ધર્મ છે અને તે જ અહિંસા પરમ ધર્મ છે. આ સિવાય કોઈ પરજીવની દયાના વિકલ્પને રાગને વાસ્તવિક અહિંસા ધર્મ માને તો તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. આકરી વાત કરું પણ આ વસ્તુ સ્વરૂપ છે. પરની દયાનો વિકલ્પ રાગ આવે ત્યાં અજ્ઞાની તે વિકલ્પનો કરતા થાય છે, એટલે પરની ક્રિયાનો હું નિમિત્તપણે કરતા છું એમ તે માને છે. શાસ્ત્ર ભણ્યો હોય એટલે ઉપાદાનપણે તો હું કાંઈ ન કરી શકું એમ કહે, પણ નિમિત્તપણે તો બીજાના જીવનનો કરતા છું એમ તે માને છે. એ કિસકી વાત કરે? મિત્યાદૃષ્ટિ કે અજ્ઞાની કે. તેથી નિમિત્ત તો થવું ને એમ નિમિત્ત થવાની ચેષ્ટા કરે છે. આહા હા, પરજીવના જીવનનો જે નિમિત્ત કરતા થાય તે અજ્ઞાની મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. આહા, હું પરને જીવાડું છું ને પરમને જીવાડે છે એવો અધ્યવસાય, એટલે એવી એકત્વ બુદ્ધિ જેને છે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે, દીર્ઘ સંસારી છે. હવે કહે છે, અને જેને તે અધ્યવસાય નથી તે જીવ જ્ઞાનીપણાને લીધે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને જ્યારે પરતરફનું લક્ષ્ય જાય છે ત્યારે પરને બચાવું અભયદાન દઉં એવો વિકલ્પ આવે, પણ તે સમયે તેને અંતરમાં એવો દ્રઢ નિશ્ચય છે કે હું એનો જીવનદાતા નથી, હું પરને અભયદાન દઈ શકતો નથી, એનું જીવન તો એના કારણથી છે, મારો વિકલ્પ તો તેમાં નિમિત્ત માત્ર છે, નિમિત્ત કરતા નહીં. આવો યથાર્થ જાણે તે જ્ઞાનીપણાને લીધે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. ભાવાર્થ, પરમને જીવાડે છે અને હું પરને જીવાડું છું એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. જેને અજ્ઞાન છે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે, જેને તે અજ્ઞાન નથી તે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. લ્યો, આવો સ્પષ્ટ ભાવાર્થ છે.
ગાથા 251. કથમ અયમ અધ્યવસાયો અજ્ઞાનોથી છે. પહેલે બી એસે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને, ક્યાં કે તે હવે પૂછે છે કે આ જીવનનો અધ્યવસાય અજ્ઞાન કઈ રીતે છે તેનો ઉત્તર કહે છે. પહેલે મરણ કા અધ્યવસાય અજ્ઞાન કૈસા હૈ એસે પૂછા તા, હવે જીવન કે બારે મેં પૂછ રહે. ગાથા પડેંગે
છે. આ ઉદય
प्राकृत है, इसके तीसरे महीने में 252 के पहले महीने एव लिखा है, वो एवं चाहिए, क्योंकि जैसे ऊपर की पहली लाइन है वैसे ही नीचे की भी पहली लाइन है, एवं भवंती। एव का अर्थ होता है ही, ऐसा ही होता है, ऐसी बात नहीं, एव मैंने इस प्रकार। देखो गाथा का अर्थ कहते हैं, जीवन जीव आयु हृदय न, ये हृदय नहीं है, आयु उदय न, ऊ का रु हो गया, विसर्ग के आगे ऊ आया उसका र होता है, आयु कमना उदय थी, जीव थी जीवे छे। पहले हमने देखा था, क्या देखा था, उसमें क्या आया था, आयु कर्म के क्षय से मरता है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। यहाँ कहते जीव आयु कर्म उदय थी जीवे छे, एवं एवं सर्वज्ञ सर्वज्ञ देव सर्वज्ञ देव भयंती एटले कहे छे, एक की बात नहीं है, सभी सर्वज्ञ ने ऐसा ही कहा है, भयंती कहा, भयंती नहीं कहा, भयंती अनेक वचन, तुम एटले तू आयुष्च पर जीवन में आयु कर्म तो मी ददासी देते नहीं, त्वया तो हे भाई ते तेषां जीवितम तेने जीवित एटले जीव पर कथन कृतम, कई रीते करूं, क्या कहते हैं कि जीव अपने आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने बताया है, और तू परजीवों को आयु कर्म तो दे नहीं सकता, तो तेरे कारण से या तेरे द्वारा अन्य जीवों का जीवन कैसे चलेगा, या तूने दूसरों को जीवन दिया बचाया या जिंदा रखा, ये बात कैसे हो सकती है। फिर दूसरे गाथा का अर्थ करते हैं, जीवन एटले जीव, दोनों गाथाओं की पहली लाइन सेम है, आयु हृदय ने आयु कर्मना उदय थी जीवती एटले जीवे छे, एवं एम सर्वज्ञाना बनंती सर्वज्ञ देव कहे छे, पर जीव तब एटले तनु आयुष्य आयु कर्म तो मन ददती देता नहीं, तही तो हे भाई तेने ते जीवितम तारू जीवित कथन न कुतम, कई रीते करो, मैं खरेखर उन्होंने आपका जीवन दिया या आपको बचा ले, कहां से आई बात, तो ये नहीं हो सकती। ये दोनों का अर्थ सुगंध है, जैसे हमने पहले मरण पर घटाया था, यहां जीवन पर घटा है। अब टीका, प्रथम तो जीवों ने जीवित खरेखर पोताना आयु कर्मना उदय थी ज छे, ये ज लगाया, तब क्या निमित्त से कार्य होता है, क्यों तो यहां खरेखर कहकर निमित्त जो बताया है, नियम रूप निमित्त, वो नियम से होता ही है, जिसको क्या कहा था हमने कल, अंतरंग निमित्त, वो यहां बताया है। तो कहते हैं जीवों ने जीवित खरेखर पोताना आयु कर्मना उदय थी छे, आयु कर्म का उदय चलता रहे, अभी मनुष्य आयु का हमारा उदय चल रहा है, और ये मनुष्य आयु के परमाणु हम पूर्व भूमि में बांधकर अभी है हमारे साथ, सत्ता में पड़े हुए हैं, तो उनका उदय जब तक चलेगा तब तक ये मनुष्य जीवन चलेगा, उसके बाद क्या होगा, ये जीवन समाप्त होने पर क्या हो जाएगा, आयु खलास हो गई, आगे क्या होगा, हाँ, क्योंकि मरने के पहले दूसरा आयु कर्म बांधते हैं, ऐसा कब तक करना है या करना चाहिए, अन्य भी से करते आए हैं, तो इसमें से जिसने आयु कर्म बांधा है तो उसके तो आगे का वो निश्चित है ही है, और ऐसे ही आयु कर्म बांधते 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 एक एक भाव करते करते यहां तक आए हैं, तो जो चरम शरीर होता है वो आयु कर्म बांधता नहीं है, क्योंकि उसी दोनों मोक्ष रहने वाला है ना, और उसका आयु का उदय होकर जब खिल जाती है पूरी तो उसका निर्वाण हो जाता है। यहां दूसरी बात बताए, यहां तो जीवन की बात चल रही है, કે જીવને જીવી તો ખરેખર પોતાના આયુ કર્મના ઉદયથી જ છે, તો આયુ કર્મ અચ્છા કે બુરા? અરે ઉસકે કારણ જીવન ચાલ રહે ને, ખતમ હો જાયગા કે મારા મરણ હો જાયગા, તમને તો અચ્છા મારે ને. કારણ કે પોતાના આયુ કર્મના ઉદયના અભાવમાં, ઉદય કા અભાવ હો તો જીવિત કરાવવું એટલે જીવિત થવું અશક્ય છે. વળી પોતાનું આયુ કર્મ બીજાથી બીજાને દઈ શકાતું નથી. કોઈ એક જીવ દૂસરે જીવ કો આયુ કર્મ દે નહીં સકતા, ઉસકે અપને વિશિષ્ટ પરિણામ કે કારણ વો બનતા હૈ, વો કોઈ ટ્રાન્સફર નહીં કર સકતા, કિસી કો દાન નહીં દે સકતા, કિસી સે લે નહીં સકતા. કારણ કે તે પોતાનું આયુ કર્મ પોતાના પરિણામથી જ ઉપાર્જિત થાય છે. ક્યાં કારણ કે આયુ કર્મ તો અપને પરિણામ સે ઉપાર્જિત થઈને, અમને ઉસકો ઉપાર્જન કિયા ને, ધન કા ઉપાર્જન કિયા, ધન કમાયા હૈ, તો આયુ કર્મ બાંધા હૈ કહેંગે, ઇકઠા કિયા હૈ. કેમ? અપને પરિણામો કે કારણ મેળવાય છે. માટે કોઈ પણ રીતે બીજો બીજાનું જીવિત કરી શકે નહીં. અમને તો એસે માને ડોક્ટર કે પાસ જાયંગે તો બચાયંગે હમકો, આયુ કર્મ કા યે ટ્રાન્સફ્યુઝન લગાય, બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન જૈસા અમેરિકા માં મિલેગા કે લંડન માં મિલેગા? તેથી હું પરમે જીવાડો છું અને પરમે જીવાડે છે એવો અધ્યવસાય, ખોટી માન્યતા, એકત્વ બુદ્ધિ ઉસમે દ્રઢપણે નિશ્ચિતપણે નિયતપણે અજ્ઞાન છે. કે અજ્ઞાન ક્યું હૈ ઉસકા કારણ બતાતે હૈ. અજ્ઞાન કા કારણ ક્યા? કે પ્રત્યેક જીવ અપને આયુ કર્મ કે ઉદય સે હી જીતા હૈ. ના મેં કિસી કો આયુ કર્મ દે સકતા હું, ના પરજીવ મુજે આયુ કર્મ દેતા હૈ. ઇસલે કિસી એક જીવ ને દૂસરે કો જિલાયા યે બાત હો નહીં સકતી. મહાવાત પૂર્વે મરણ ના અધ્યવસાય વિશે કહ્યું હતું તે પ્રમાણે અહું પણ જાણું. ક્યાં કહેતા હું? એક ઓર બાત કહી હતી જો ટીકા મેં નહીં કહી હો, યાદ હૈ? વહા વ્યવહાર મેં કી ભી વાત કહી હતી. યે તો બાત ખુલી હું, પરંતુ વ્યવહાર મેં સે એસા કહેને મેં આતા હૈ કે ઇસને ઇસકો મારા, દોનો નિયમ કો યથાર્થ રીતિ સે અંગીકાર કરી કહું. યે મરણ કે બારે મેં ઉન્હોને લિખા થા ભાવાર્થ મેં 55 પૃષ્ઠ પર. દેખો ભાવાર્થ કે દૂસરા પેરેગ્રાફ કે વ્યવહાર આ પ્રમાણે છે કે પરસ્પર નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી, કિસીને કિસી કો મારા યે જબ કથન આયેગા તો એ નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવ યા સંબંધ બતાને વાલા કથન હૈ. પર્યાયનો ઉત્પાદ વ્યય થાય તેને જન્મ મરણ કહેવાય છે, કહેવામાં આવે છે. અને ત્યાં જેના નિમિત્તથી મરણ થાય તેના વિશે એમ કહેવામાં આવે છે કે આને આને માર્યો, એ વ્યવહાર કા કથન હૈ. અહીં એમ ન સમજવું કે વ્યવહારનો સર્વત્ર નિષેધ છે. એને વ્યવહાર ભી ઉસકે જાણેલો પ્રયોગ નહીં, ઉસકે અપને અપની ઉસકી વહા વેલ્યુ હૈ વ્યવહાર નહીં કે. જેઓ નિશ્ચયને નથી જાણતા, નિશ્ચય કો જાણતે નહીં ઓર વ્યવહાર કો હી સર્વથા યથાર્થ વસ્તુ સ્થિતિ માનતે હૈ, ઉનકે લિયે વ્યવહાર કા નિષેધ કિયા જાતા હૈ. પરંતુ વ્યવહાર ઓર નિશ્ચય અપની અપની જગહ પર હૈ ઓર ઉસકી અપની અપની પ્રયોજન અલગ અલગ સિદ્ધ હોતા હૈ. જેમ કે તે જાણ્યા પછી એને નિશ્ચય કો જાણકર બંને નયોને અવિરોધપણે જાણી યથાયોગ્ય નયો માનવા, યહી બાત યહાં પર ભી લાગુ હોતી હૈ. ઇસને ઇસકો જિલાયા એસા જો કહેંગે વો વ્યવહાર નહીં કા કથન હોગા. પરંતુ વો વ્યવહાર નહીં કા કથન તો હમ કર સકતે હૈ, પરંતુ નય તભી કહેતે હૈ જબ વો નિશ્ચય નહીં કા વિષય કા ભી અંગીકાર હો તબ. સર્વથા માનને મેં ये दोष लगता है, वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है। आप पढ़ेंगे
अब 67 पृष्ठ पर हम आएंगे। यहाँ पर फिर वही कह रहे हैं जो रीडिंग है। अवे पूछे छे के आ जीवन नो अध्यवसाय ज्ञान कई रीते छे, वहां मरण के बारे में अध्यवसाय था, या जिला सकता हूँ या दूसरे के कारण से जीता हूँ, इस तरह का जो अध्यवसाय ये अध्ययन कई रीते छे तेनो उत्तर कहे छे। गाथार्थ एवं भणंती संवन्नु एम सर्वज्ञ देवो कहे छे, शू के जीव आयु कर्मना उदय थी जीवे छे एम सर्वज्ञ देवो कहे छे। ये निमित्त का कथन है, ये समझना चाहिए। हवे आमाथी केटलाक ऊंधी ले छे कि जो कुंदकुंद आचार्य कहे छे कि सर्वज्ञ देवो एम कहे छे, भणंती संवन्नु लो आवो गाथा में चोखो पाठ छे, अने तमे कहो छो कि जीव भाषा करी शके नही, आमा खरु शू? खरु ए छे के नैनी भाषा जीव जाणतो नथी एटले गोटा वाळे छे। अरे भाई, ए तो वाणीना काळे, ए वाणीना काळे निमित्त कोण हतुं? एनु ज्ञान करावा भणंती संवन्नु एम व्यवहार थी कहू छे, पण एनो अर्थ एम नथी के सर्वज्ञ देव एटले जीव भाषा करी शके छे। भाषा तो भाषा थी ज थई छे, भगवान सर्वज्ञ देवे भाषा करी छे एम छे नही। हवे नहीं थी यथार्थ समझे नही, अने वांदा काढ़े के भगवाने कहू छे, एवो चोखो पाठ तो छे। क्या कहा? नहीं, नहीं भाषा बराबर समझे नहीं, और फिर ऐसा कहें कि भगवान ने कही छे, ऐसा करके उंगली दिखावे। भाई ये कई अपेक्षाएं कथन छे, भगवान ने भाषा करी छे एम क्या बतावू छे? बतावू नथी, भगवान तो जाननार छे, पण वाणीना काळे भगवान एटले योग निमित्त हता, तेथी निमित्तथी भगवान कहे छे एम कथन छे। या एक बात बताई ना, भगवान की वाणी जो है उस वाणी को भगवान का योग निमित्त है, इसलिए उसको भगवान की वाणी कहने में आता है। बाकी ते काळे भाषानी पर्यायना उत्पादनो स्वकाळ हतो, तो स्वतंत्रपणे भाषा वर्गना परमाणुओ शब्द रूपे पोताना उपादान थी परिणमी गया छे, अने तेमा भगवान योग ते काळे निमित्त हता। भगवान कहे छे एनो अर्थ, एनो आ अर्थ छे एम तो आचार्य कुंदकुंदे पेली गाथा में वोच्छामी हूँ समयसार कहूँ छू एम कहू छे। पण भाई ए तो संक्षेप में निमित्तनी मुख्यताथी कथन करवानी व्यवहारनी शैली एवी शैली छे, तेने यथार्थ समझवी जोईए। त्यां 11मी गाथामां भावार्थमां कह्युं छे ने के जीनवानीमां व्यवहारनो उपदेश शुद्ध नयनो हस्तावलंब सहायक जाणी बहु कर्यो छे। क्या कहते हैं? ये शुद्ध नय को सपोर्ट करने वाला जीनवानी का जो व्यवहार का उपदेश है, यह देखकर उसी का कथन या उसी के पद्धति से कथन शास्त्र में बहुत बार किया गया, यानी व्यवहार का ही कथन शास्त्रों में अधिकतर किया गया है। क्यों? कि वह शुद्धने के लिए, समझने के लिए हेल्पफुल है, इसलिए। पन एनु फल संसार छे, यानी वो हस्तावलंबन यानी जो कोई सहायक ऐसा जो कोई शुभभाव है वही करते बैठेगा तो उससे उसको संसार में ही रूलना पड़ेगा। एटले जिनवानी मां निमित्त थी कथन आयु हो त्या कोई एम मानी ले के आ एनु एटले परणो करता छे तो ते अज्ञान छे। भाई आ देहादि नी जे क्रिया थाय ते ते काळे तेना स्वतंत्र उपादान नी योग्यता थी थाय छे त्यां कोई शरीरादि नी विषय संबंधी क्रिया हूं करूं छू एम माने ते अज्ञान छे एनू फळ संसार छे। ज्ञानी ने कदाच विषय संबंधी विकल्प थाय तो पण तेनो ए करता थतो नथी तो वो उसका ज्ञाता ही है तो उसके ऐसे परिणाम आ जाए विकल्प के विषय मतलब जो पंचेंद्रिय के विषय है उसका सेवन करने का उसको विकल्प भी आ जाए पर वो उसका मैं करने जैसा है और करना ये मेरा कर्तव्य है इस तरह वो उसका कर्ता नहीं है मात्र ज्ञाता ज रहे छे। हवे त्या शरीरादिनी क्रिया ना करता बनानी तो वात ज क्या रही आवड़ो मोटो ज्ञानी ने अज्ञानी मां फेर छे आवड़ो माटो थयो छे आवड़ो मोटो जो है ने भाई आप बधा द्रव्य ने स्वतंत्र जुदा जुदा राखी ने बीजू द्रव्य पर्याय निमित्त हो एम जाणवू ते यथार्थ छे। देखो यहां बात क्लियर की है स्वामी जी तो कहते हैं द्रव्य और ब्रैकेट में लिखा है पर्याय यानी द्रव्य निमित्त है कह रहे हैं लेकिन वास्तव में पर्याय ही निमित्त होती है पन एक द्रव्य में बीजा द्रव्य नो हाथ जाए एक द्रव्य की सत्ता में बीजू द्रव्य प्रवेशी ने एनु काम करे वा एक द्रव्य बीजा द्रव्य की सत्ता में प्रवेशी ने बीजा द्रव्य नु काम करे एम जो हो तो एक द्रव्य की सत्ता भिन्न नहीं रहे सर्व द्रव्य नो लोप थशे। एक द्रव्य की पर्याय बीजा द्रव्य ने करे नहीं एम जो हो तो ज अनंत द्रव्य की सत्ता भिन्न पोत पोतापने टकी रहे वास्तव में दरेक द्रव्य पोताना ज उपादान वे द्रव्य बने स्वभावती ज रहेलू छे। हाँ जी हवे जो एक द्रव्य नी पर्याय अन्य द्रव्य ने करे तो तेनी उत्पाद वे द्रव्य रूप सत्ता बीजा मां चाली जाए पन एम कदी बनतु नथी आवो झीनो मार्ग बापू वानिया ने विचारणे धंधा आड़े नवराश न मळे एटले शू थाय तो कहते अंधारे असड़ाय मार्ग तो आवो छे प्रभु तू कोण छो भाई ए बतावे छे तू ज्ञाता दृष्टा छो ने नाथ जगत नी क्रिया काळे पण तू जाणनार देखनार छो ने प्रभु हाँ यानी क्या कह रहे जो जगत के अनंत द्रव्यों का जो कुछ परिणमन हो रहा है हा? 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 उसका भी तू ज्ञाता दृष्टा है ऐसा कह रहे ये जानवा देखवाना स्वभाव ने ओळंगी ने राग नु करवू ने परणू करवू एवी करता बुद्धि क्या थी आवी ए परणी करतु तो बुद्धि तो तारा ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मानो अनादर करियो छे ए वडे तारा आत्मानो घात थई रह्यो छे ने प्रभु आ अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य ने अपरिग्रह ए पांच महाव्रतना परिणाम अर्थात परणी दया पाळवी आदि भाव ए अहिंसा धर्म छे एम छे नहीं वो आखिर के बात भूलना नहीं तो सब अनर्थ हो जाएगा। पंडित श्री टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एनो खुलासो कर्यो छे के मुनि ने समिति गुप्ति में तीव्र प्रमाद नहीं तेथी दया पाड़ी एम कहेवामां आवे पण त्यां परनी रक्षा करवानो हेतु ज्ञानी नो छे नहीं केम के परनी रक्षा ते करी शकतो नथी तीव्र प्रमादनो अभाव छे तेथी इरिया समिति आदि परनी रक्षानो जे शुभभाव थाय छे तेने व्यवहारे दया कही छे વાસ્તવમાં સમિતિ ગુપ્તિથી ધર્મ એટલે સંવર અને પરજીવોની રક્ષા કરવી એ સંવર નિર્જરા એમ છે નહીં. હવે લોકોને આ આખરું પડે પણ શું થાય? અહીં તો એમ પૂછ્યું છે ને કે પરને હું જીવાડું ને પરમને જીવાડે એ અધ્યવસાય અજ્ઞાન કઈ રીતે છે? તો કહે છે કે જીવ આયુ કર્મના ઉદયથી જીવે છે એમ સર્વજ્ઞ દેવો કહે છે. હવે આમાં એક તો સર્વજ્ઞ દેવો કહે છે એ વ્યવહાર છે અને બીજો આયુ કર્મથી જીવે છે એ પણ વ્યવહાર છે. એ તો ખરેખર પોતાની યોગ્યતાથી જ જીવે છે. હવે એ પોતાની જો યોગ્યતા હૈ ક્યા વહ ભી ઉસકા વિભાવ હૈ કે વહ મનુષ્ય અભી મનુષ્ય પર્યાય મેં હૈ ના તો મનુષ્ય પર્યાય મેં વો મનુષ્ય બોલ કે જી ના યે ઉસ જીવ કા વિભાવ પરિણામ બને ક્યુંકે જૈસા સ્વરૂપ હૈ ઉસ રૂપ જી ના કહેને રહેના હમેશા વહ તો સિદ્ધ ગતિ મેં હોગા સવાર પરિણામ બને. ખ્યાલ મેં યહાં ક્યા કહે રહે થે? એ દો બાતેં બતાઈ હૈ. યહાં તો કહે રહે કે ખરેખર પોતાની યોગ્યતાથી જ જીવ જીવે છે. એ જો યોગ્યતા જો બતા રહે હૈ વહ ભી વિભાવરૂપ યોગ્યતા હૈ યે મેં બતાના ચાહતો હું. પણ બીજો કોઈ જીવાડી શકતો નથી એમ સિદ્ધ કરવું છે. તો નિમિત્તથી કહ્યું કે આયુ કર્મના ઉદયથી જીવે છે આ વ્યવહારનું વચન છે. આયુ કર્મ તો જડ છે અને આનું રહેવું જીવવું તો પોતાના ઉપાદાનની યોગ્યતાથી છે. પણ તે કાળે આયુ કર્મનો ઉદય નિયમરૂપ નિમિત્ત હોય જ છે. તેથી પરજીવ આને જીવાડે છે એવી ખોટી માન્યતાનો નિષેધ કરવા આયુ કર્મને લઈને જીવે છે એમ વ્યવહારથી કહ્યું છે. એ વાત સમજમાં આ ગઈ ને કે નહીં? વાત સમજમાં આ ગઈ કે નહીં? દેખો અભી હમ પ્રદેશતુગુણ કી અપેક્ષા સે થોડા સોચેંગે. તો હર જીવ મેં પ્રદેશતુગુણ હૈ કે નહીં? તો પ્રદેશતુગુણ કા કાર્ય ક્યા હૈ? જીવ કા કોઈ ના કોઈ આકાર હો. અભી હમ જીવ કી બાત કરતે હૈ ઇસલિયે જીવ કો કહેંગે. વૈસે તો પ્રદેશતુગુણ કે કારણ સે દ્રવ્ય કા કોઈ ના કોઈ આકાર હો, બરાબર? તો યહાં તો આપને સહી કહા કે જીવ કોઈ ના કોઈ આકાર હો, ક્યુંકિ જીવ કે પ્રદેશતુગુણ કી બાત કર રહે ના. તો અભી તુમ્હારા જો આકાર હૈ વહ આકાર યાને પ્રદેશતુગુણ કા સ્વભાવરૂપ પરિણમન હો રહા હૈ ક્યા વિભાવરૂપ હો રહા હૈ? બોલો બોલો મમ્મી, આપ ક્યા કહેતી હૈ? ક્યું ક્યું નહીં? પણ વિભાવરૂપ પરિણમન કેમ છે એનું કારણ જોઈએ છે. પરદ્રવ્ય કે નિમિત્ત સે જો પરદ્રવ્ય કે નિમિત્ત સે જો પરિણમન હો રહા હૈ વો વિભાવરૂપ પરિણમન હૈ. સુનના હો, જૈસે ઉદગલ જો પરમાણુ હૈ ઉસકા સ્કંદ હો જાતા હૈ તો વો પરમાણુ કા આકાર સમજો જો એક પ્રદેશ હૈ વો કે બહુ પ્રદેશ હો જાતા તો ઉસકા નિમિત્ત હૈ ના. તો પર નિમિત્ત કે અપેક્ષા સે જો આકાર હોગા ઉસકો હમ વિભાવરૂપ પરિણમન કહેંગે. અભી જબ સિદ્ધ અવસ્થા કા જીવ હો ગયા સિદ્ધ ગતિ મેં ગયા તો ઉસકા જો આકાર હોગા ઉસમેં નિમિત્ત કોણ હૈ? કોઈ નહીં હૈ. सुनना, यानी परद्रव्य नहीं है। जो उस समय जीव का आकार होगा वह उसका स्वभाव परिणाम है। अभी आपको लघु सिद्धांत परिशिका बतानी पड़ेगी। नहीं नहीं, निकालो ना, वहां दो तीन किताबें मिल जाएगी अपने को। हाँ, क्या बता रहे? अभी वो हाँ, स्वभाव व्यंजन पर्याय विभाव। मैं स्वभाव अर्थ पर्याय की बात बताना चाहता था। देखो सुनो, हमेशा जीव द्रव्य में स्वभाव व्यंजन पर्याय शुरुआत में होती है और विभाव स्वभाव अर्थ पर्याय पहले शुरू होती है और स्वभाव व्यंजन पर्याय आखिर में होती है, और पुद्गल में दोनों एक साथ होते हैं। परमाणु हो गया तो उसका स्वभाव परिणमन हो गया आकार की अपेक्षा से, और बाकी जो कुछ है वो अपने अपने योग्यता से जो होना है वो। हेलो, तो अब यहां कह रहे हैं, मैं ये बता रहा था कि यहां जीव का जो कुछ अभी मनुष्य रूप से रहना रूप जो कोई कार्य हो रहा है, तो क्या वो उसका स्वभाव परिणमन है? अब बात ख्याल में आ गई? सुदर्शन जी, उसको आकार हो रहा है जीव का। जैसा देखो, अभी बहुत स्थूल उदाहरण है, आपके पास एक बाल्टी, आधा बाल्टी पानी है, तो वो आपने एक लोटे में डाल दिया तो पानी का आकार कैसा हुआ? लोटाकार हुआ। परात में डाल दिया तो उसको निमित्त अन्य है ना, ख्याल में है ना, उसको परद्रव्य का निमित्त कहेंगे। वैसे यहां जीव का आकार कैसा, ऐसा मोटा हो गया, दुबला हो गया, जो कुछ हो गया वो तो शरीर के कारण से उसका आकार हो गया। अब आगे तो यहां देखो क्या कह रहे हैं, ये पैराग्राफ जो है ना उसमें बीच से पढ़ रहा हूं मैं, नीचे से चौथी पांचवी लाइन में। आयु कर्म तो जड़ छे अने आनु रेवू जीवू तो पोताना उपादाननी योग्यता थी छे। ये किसलिए कह रहे हैं कि आयु कर्म से वो जी नहीं रहा है, अपने स्वयं के उपादान से जी रहा है। ये ऐसा क्यों बता रहे हैं? तो कहते हैं, पन ते काले आयु कर्म नो उदय नियम रूप निमित्त हो ये थी, पर जीव आने जीवाड़े छे एवी खोटी मान्यता नो निषेध करवा आयु कर्म ने लईने जीव जीवे छे एम व्यवहार थी कयू। अभी ये जो अन्य लोग जो अन्य आरोप करते हैं उसको हटाने के लिए आयु कर्म के कारण से ये जी रहा ऐसा कहेंगे, लेकिन वो निमित्त का कथन है। तो साचा क्या है? अपनी योग्यता के कारण से वह जी रहा है, पर अपनी योग्यता जो है वह विभाव रूप योग्यता, ये मैं बता रहा था आपको। भले निश्चय से है वो विभाव रूप, लेकिन है तो विभाव। बापू व्यवहार न कथने कथन ने यथार्थ न समझे तो वाते वाते वांदा उठे एवो छे। मैंने कोई अलग टॉपिक बताया, यहां तो जो अभी चालू टॉपिक चल रहे हैं उसके बारे में स्वामी जी बता रहे हैं। विचारो वांधा विवाद माज अटवाई जाए, भाई चारित्र दोष जुदी चीज छे ने श्रद्धा दोष जुदी चीज छे। ये क्या कहना चाहते हैं? श्रद्धा का दोष होगा तो क्या होगा बेन? हाँ, और चारित्र का दोष होगा तो बोलो बोलो। हाँ, चारित्र का दोष आयु। आप क्या कहते हैं मम्मी? चारित्र में दोष हो तो सिद्ध दशा न थाय। अच्छा, अब हाँ मिली भाई, आप कुछ बोलेंगे? हाँ सम्यक नहीं होगा मिथ्या भी होगा बराबर। हाँ अरे उसको यथाज्ञ चारित्र नहीं होगा कहो ना, यानी वह वितराग नहीं होगा। हाँ जी राग ही रहेगा। और आप जो कह रहे हैं आयु में जाएगा नहीं जाएगा वो बिन। हाँ और आप जो कह रहे हैं केवल ज्ञान नहीं होगा बराबर है, पर वो कब कि पूर्ण वितराग नहीं होगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा, पर हम तो चारित्र से केवल ज्ञान होता है ऐसा मानेंगे तो और गड़बड़ है, क्योंकि चारित्र गुण का कार्य करेगा, ज्ञान गुण का कार्य करेगा। लेकिन ऐसा ही चैनल है कि पहले वह वितराग होगा। अभी अपनी भाषा में सीधे जाओ तो बारहवें गुण स्थान में, ग्यारहवें को हटा दो, ख्याल में है ना। तो यहां क्या हम तो बराबर कह रहे हैं कि भाई श्रद्धान खोटा होगा, या क्या कह रहे हैं अभिप्राय, अभिप्राय का दोष होगा तो सम्यक तो नहीं होगा। सम्यक तो इज अल्टीमेटम ना। अभी वैसे और देखा जाए तो श्रद्धा में दोष तो क्षाही सम्यक भी नहीं होगा, ले लो और थोड़ा सा खींचादानी करके। और यहां तो चारित्र सम्यक चारित्र होने के क्षाही चारित्र होने के लिए बारहवां गुण स्थान की आवश्यकता है। हाँ जी आप कुछ बोल रहे हैं।
देखो चारित्र गुण जुदी चाहिए रहे, विकल्प होना प्रवृत्ति होना ये जुदी बात है, और श्रद्धा विदोष अभी अभिप्राय अलग बात है। यही बात आई थी पहले 58 पृष्ठ पर आई थी, अभिप्राय तो दूर रहे विकल्प है न थी, वहां पूछा था ना अभिप्राय क्या है और विकल्प क्या है। अभिप्राय का दोष है दृष्टि का दोष, श्रद्धा का दोष, खोटी मान्यता खोटा अभिप्राय ये श्रद्धा का दोष 58 पृष्ठ पर आया था। नीचे से वो बड़ा पैराग्राफ है, नीचे से दूसरा उसमें सेकंड लाइन पर नहीं मारे वो अभिप्राय तो दूर है वो विकल्प ही नहीं, तो अभिप्राय नहीं है ना श्रद्धा का दोष नहीं है, फिर भी विकल्प तो हो सकता है ना कभी, जब यानी स्वरूप में गुप्त नहीं है तब उसको विकल्प तो आ सकता है, इसको बचाऊं या इसको मारो जो कुछ है, तो उसके लिए कहा है वो तो श्रद्धा का चारित्र का दोष हो गया। तो ये यहाँ दो बातें अलग बातें।
अभी यहाँ और एक अच्छा बोलना है आपको और कुछ यहाँ और एक मतलब एडिशनल बात हम बताएंगे कि जिसके श्रद्धा का दोष है उसके चारित्र का भी दोष होगा,
दोनों
ही होंगे। और जिसके चारित्र का दोष है उसके श्रद्धा का दोष होगा और नहीं भी होगा,
यानी सम्य दृष्टि को श्रद्धा का दोष नहीं है फिर भी नीचे के गुण स्थानों में चारित्र का दोष है।
अब आगे परत चक्रवर्ती 6 लाख पूर्व सुधी अने ऋषभ देव 83 लाख पूर्व सुधी रागमा ने भोगमा ग्रस्तपने रहा, पन भोगमा सुख छे ये नई बात है, यानी कभी ज्ञान में नहीं आई थी
उनकी आयु कितनी थी पता नहीं, बड़ा चक्रवर्ती थी
नहीं पर अभी 6 लाख पूर्व सुधी और इनके तो 83 लाख पूर्व सुधी, यानी वो राजपाट में इतने काल तक रहे ऐसा कहना चाहते, तो बड़े चक्रवर्ती की आयु क्या थी फिर। भरत चक्रवर्ती 6 लाख सुधी पूर्व सुधी अरे सत्य भगवान 83 लाख पूर्व सुधी रागमा ने भोगमा ग्रस्त बने रहा। अब वो तो भरत चक्रवर्ती को ग्रस्त बना छोड़ दिए और तुरंत ही उनको केवल ज्ञान हो गया ना,
केवल ज्ञान होने के बाद आई थी ना उनकी
बात। अच्छा अच्छा रहने दो
नहीं मालूम।
हाँ ये
केवल ज्ञान होने पर तुरंत मोक्ष नहीं गए,
नहीं नहीं केवल
ज्ञान होने के लिए एक अंतर मुहूर्त लगा, बाद में उनकी भी जो कुछ हाँ दिव्य भूमि जिसको कहते हैं उपदेश वगैरह उनका भी हुआ था, वो अभी ख्याल नहीं आ रहा है। वो 60,000 वर्ष तक तो इसके लिए घूमे थे उन्होंने 60,000 वर्ष,
यानी ये बड़ा फिर भी ये बात ध्यान में नहीं रही हमारे। 6 लाख पूर्व तक ऋषभ ये राजपाट में रहे रागमा भोगमा ग्रस्त बने रहे, लिखा ना પણ ભોગમાં સુખ છે ને ભોગની ક્રિયાનો હું કરતા છું એવી બુદ્ધિ પહેલેથી સમ્યક દર્શનના તાળથી જ ઉડી ગઈ હતી. આ ભોગ સંબંધી રાગના રસ રૂચિ ઉડી ગયા હતા, તેમને રાગનું કરતા પણ ઉડી ગયું હતું. ગ્રસ્ત દશામાં પણ તેઓ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જ હતા, કેમ કે સ્વભાવનું તેમને નિરંતર અવલંબન હતું. હવે કહે છે, તું પરજીવોને આયુ કર્મ તો દેતો નથી, તો હે ભાઈ તે તેમનું જીવિત જીવતર કેવી રીતે કર્યું? શું કહે છે કે પરજીવો પોતાના આયુકર્મથી જીવે છે, હવે તેને જો તે જીવાડ્યા તે જીવાડ્યા તો શું તે મરી જવાના હતા ને તે આયુષ્ય દઈને જીવાડ્યા છે? તું એને આયુકર્મ તો દેતો નથી, તો તેને જીવત દાન અભયદાન કઈ રીતે આપ્યું? નિશ્ચયથી તો પોતાની રાગરહિત વિતરાગ સ્વરૂપ વસ્તુ ભગવાન આત્મા છે, તેની દ્રષ્ટિ કરવી અને અનુભવ કરવો તે અભયદાન છે, તે આત્મરૂપ છે અને પરની રક્ષાનો વિકલ્પ ઉઠે છે તેને વ્યવહારે અભયદાન કહેવાય છે. વાસ્તવમાં કોઈ કોઈને જીવાડે છે કે તું પરને જીવાડે છે એમ છે નહીં. બાકી કી બાત આપણે કર લેંગે અભી. જાવાની કે જ્ઞાન તે સૂજે મુતાનો